ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक कल दिन की 3 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। श्री दिसानायक का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। श्री दिसानायक ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच भारत और श्रीलंका के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी हित के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि चेन्नई जाफना कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जब पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तब श्रीलंका में भी इसे लेकर प्रसन्नता व्यक्त की गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम मछुआरों के मुद्दों पर मानवीय दृष्टिकोण रखेंगे। श्री दिसानायक आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी भेंट करेंगे। श्रीलंकाई राष्ट्रपति का बोधगया जाने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राजस्थान सरकार का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जयपुर में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें 7 केंद्र सरकार की और 2 राज्य सरकार की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा वे 35,300 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिनमें 9 केंद्र सरकार की और 6 राज्य सरकार की परियोजनाएं शामिल हैं। राज्यसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर एक विशेष चर्चा शुरू हुई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। वर्ष 1949 में नियम की आलोचना करने के लिए प्रसिद्ध गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और अनुभवी अभिनेता बलराज साहनी को जेल भेजने से संबंधित कांग्रेस के फैसले का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कांग्रेस की आलोचना की। श्रीमती सीतारामन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय एक परिवार की सहायता करने और सत्ता में बैठे लोगों को बचाने के लिए संविधान में संशोधन करती रही है। चर्चा में भाग लेते हुए सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। श्री खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को मतदान का अधिकार दिया है। चर्चा जारी है। लोकसभा में आज 2024-25 के पहले बैच की पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई। सरकार ने 87,762 करोड़ रुपए से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में आईजी, लॉजिस्टिक, खुदरा, एफएमसीजी और बैंकिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। भाजपा के डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार पूरक अनुदान मांगों के अंतर्गत किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में देश के गरीबों और किसानों को करीब 4,50,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 41.7% दर्ज किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किया जाता है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। युद्ध के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्वी पाकिस्तान का उदय बांग्लादेश के रूप में हुआ था। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।